ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है।
ओम शांति। सभी शांति प्रेमी आत्माएं, प्रभु प्रेमी आत्माएं यहां बैठे हैं, और अगर हम कहें योगी आत्माएं बैठे हैं तो ये गलत नहीं होगा। प्रभु प्रेमी भी हो, शांति प्रेमी भी हो और योगी आत्माएं भी हो, हैं तीनों। जो समझते हम तीनों हैं हाथ उठाएं। अच्छा, वेरी गुड। अवश्य शांति से सभी प्रेम रखते हैं। हर एक व्यक्ति की अंतिम ख्वाहिश यही है कि हमें शांति मिले। प्रभु प्रेमी भी सभी हैं, क्योंकि दुख के समय ईश्वर के सिवाय और कोई कौन याद आता है, वही याद आता है। और योगी सभी हैं, क्योंकि किसी न किसी के साथ योग हर वक्त रहता है, यानी मन से किसी को याद करते हैं तो उसके साथ योग हो जाता है। योग माना याद, योग माना मिलन, योग माना जोड़, और राज योग माना उस परमात्मा से जोड़, उस परमात्मा से मिलन। तो योग शब्द को समझना मुश्किल नहीं है। योग माना जोड़, दो चीजों को जोड़ते हैं उसको योग कहते हैं। और जब दो चीजें या व्यक्ति या कोई भी जिनको मिलाया उनको अलग करते हैं तो उनको उसको वियोग कहा जाता है। तो वियोग माना अलग होना, योग माना मिलना। तो किसी भी प्रकार का मिलन ये योग है। और जब हम इस योग शब्द को उस रूप से समझते हैं तो परमात्मा से मिलन ये राजयोग है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ सत्ता जिसके लिए कहा गया है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो उस ऊंचे से ऊंचे के साथ अगर मन की तार जुड़ जाए तो हम राजयोगी कहलाएंगे। अब कई ये भी कहते हैं कि हम उस परमात्मा को याद तो करते ही हैं, क्योंकि जब जब दुख की घड़ी आती है तो वही याद आता है। लेकिन हम सबकी ये शिकायत भी है कि हम पूजा करने बैठते हैं, पाठ करते हैं, जप तप हवन तीर्थ यात्राएं पठन पाठन बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये मन जो है ना वो बहुत चंचल है। मन बड़ा पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़ा है, बंदर की तरह कूदता रहता है। ये स्थिर नहीं होता, एकाग्र नहीं होता। इसीलिए हम कोशिश तो करते लेकिन ये मन एकाग्र क्यों नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस सच्चे परमात्मा को हम जानते नहीं हैं। अगर जानते होते तो मन अवश्य एकाग्र होता। मन इसलिए भटकता है क्योंकि उस ईश्वर को नहीं जानते। और मन लगाने वाला मैं कौन हूँ वो भी नहीं जानते। खुद को देह समझ लिया, फलाने नाम रूप धर्म भाषा जाति प्रांत देश इसी का ही हूँ, यही हूँ मैं। तो जो शरीर से संबंधित बातें हैं वही मन में आएगी, और तो कौन सी बातें आएगी। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं और फिर मन को परमात्मा में लगाते हैं तो मन लग सकता है। लेकिन मन को उसमें लगाने के लिए उस परम सत्ता की भी पहचान चाहिए, किस में मन लगाना है। आपका टेलीफोन तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिससे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, फोन करना चाहते हैं, उसका नंबर ही पता नहीं है, तो कैसे आप उनसे बात कर सकेंगे। नंबर पता हो, उनसे मिलना है तो उनकी एड्रेस पता हो, सब कुछ पता हो, तभी तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो राजयोग माना उस परम सत्ता की पहचान, जिसके आधार से हम मन उसमें लगाते हैं। अब कई समझते हैं कि परमात्मा से मिलने के तो कई तरीके हैं, किसी भी रास्ते से हम उनसे मिल सकते हैं। जैसे माउंट आबू में अगर जाना है तो कई रास्ते हैं, पहाड़ इतना बड़ा है, कई रास्तों से जा सकते हैं। वे उबड़ खाबड़ वाले रास्ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ के भी जा सकते हैं। लेकिन एक रोड भी बना हुआ है जिस पर गाड़ियां जाती है और 45 मिनट में आप माउंट आबू पहुंच जाते हैं। तो कौन सा रास्ता पसंद करेंगे माउंट आबू जाने का, चढ़ करके इतनी तकलीफ उठा करके फिर जाना चाहेंगे या गाड़ी में बैठकर जाना चाहेंगे? हाँ, जरूर सहज रास्ता ढूंढेंगे। तो राजयोग वो सहज विधि है जिस सहज विधि से हम परमात्मा से मिलन बना सकते हैं। तो वो सहज विधि क्या है वो तो आपको हम शाम को बताएंगे, लेकिन वो विधि अगर पता चल गई और परम सत्ता की पहचान हो गई तो फिर हम योगी नहीं राजयोगी कहलाएंगे। योगी तो सभी है, ईश्वर प्रेमी भी सभी हैं, शांति प्रेमी भी सभी हैं, लेकिन राजयोगी बनने के लिए उस परम सत्ता को पहचानना है और वो सही विधि जाननी है जिससे सहज हम उस परमात्मा से मिलन मना सके। और फिर उनसे प्राप्ति क्या होगी ये भी हमें पता हो। कई लोग परमात्मा को याद तो करते हैं लेकिन उनसे प्राप्त क्या करना है वो नहीं जानते, क्योंकि धन चाहिए, पुत्र चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये अनेक इच्छाएं रख करके बैठे हैं। और इन इच्छाओं को मन में रखते हुए हम परमात्मा को याद करते हैं, हे प्रभु ये हमें दे दो। लेकिन सर्वोच्च प्राप्ति हम किसको कहेंगे? ये जब ये जो भी हम इच्छाएं रख करके भगवान से मांगते हैं ये सब विनाशी प्राप्तियां हैं। आज धन मिला कल धन चला जाएगा, धन के लिए तो कहते हाथों की मैल है, आया और गया। आज कोई चीज मिली, पोजीशन मिली, कल पोजीशन से उतार भी सकते हैं। आज पद मिला कल कहेंगे इस्तीफा दे दो, खत्म हो गया पूरा। तो ये जो भी भौतिक प्राप्तियां हैं ये सब विनाशी है, ये सब क्षणभंगुर है, ये सब अल्पकाल की है। और ये तो आपके भाग्य के मुताबिक अवश्य मिलेगी, अगर आप कर्म करोगे तो भाग्य जरूर प्राप्त होगा। ये छोटी छोटी जो प्राप्तियां हम इस दुनिया में इस भौतिक शरीर में रहकर इस संसार की चाहते हैं ये तो जैसे परछाई की तरह है। आप परछाई के पीछे पीछे जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो रोशनी आपके पीछे है और परछाई आगे तब होगी जब रोशनी पीछे है। तो आप परछाई के पीछे पीछे दौड़ोगे तो रोशनी से तो दूर जाओगे, और जितना रोशनी से दूर जाओगे परछाई के पीछे पीछे दौड़ोगे तो आपकी परछाई और लंबी होती जाएगी और लंबी होती जाएगी। पकड़ने की कोशिश करोगे वो आपके हाथ कभी नहीं आएगी। तो समझदारी क्या होगी, वो परछाई के पीछे पीछे दौड़ने की बजाय, क्योंकि जितना परछाई के पीछे दौड़ेंगे उतना अंधेरे में जाएंगे, रोशनी से दूर जाएंगे और वो हाथ भी नहीं आएगी। इसीलिए कहा गया है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा में ही रह गए, न वो ईश्वर की अनुभूति हुई, न ही ये संसार की उपलब्धियों को हमने कुछ पा भी लिया। अगर पा भी लिया तो इच्छाएं तो कोई कम होने वाली नहीं है, वो तो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी पीठ परछाई को दे दी और रोशनी की तरफ गए, रोशनी की तरफ जाते जाएंगे प्रकाश बढ़ता जाएगा और आपकी परछाई छोटी होती जाएगी, और जितनी छोटी होती जाएगी धीरे 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 आपके पीछे पीछे भी आती जाएगी, और जैसे ही आप प्रकाश के पास पहुंचेंगे वो रोशनी तो आपको प्राप्त होगी लेकिन परछाई भी आप में समा जाएगी, क्योंकि वो आपकी ही परछाई थी, किसी और की तो थी नहीं। तो इसीलिए दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ये है जैसे परछाई के पीछे दौड़ना। तो ईश्वर से भी आप वंचित हो जाओगे और जो भौतिक प्राप्तियां जो विनाशी है वो भी आप गंवा सकते हो। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अब मेरे साथ योग लगाओ, और मेरे साथ योग लगाकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ तो भाग्य आपका कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, समय से पहले और भाग्य, भाग समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जितना भाग्य आपके है वही मिलेगा, पर समय से पहले नहीं मिलेगा, समय पर मिलेगा, जितना आपका है वो आपको मिलेगा, आप चिंता मत करो। तो वो तब होगा जब आपका बुद्धि योग उस परमात्मा से होगा। कर्म हाथों से करेंगे और मन बुद्धि ईश्वर के साथ होगा, और उससे जो आत्मा को प्राप्ति होती है वो प्राप्ति है जो हम सचमुच अपने जीवन में अगर प्राप्त कर लेते हैं तो कोई और इच्छा होती नहीं, कोई और इच्छा रहती नहीं है। और वो कौन सी प्राप्ति है, आज किसी के पास बहुत कुछ हो, धन माल मिल्कियत जमीन जायदाद मान शान इज्जत सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। अच्छे कर्म भी कर रहा है लेकिन शांति नहीं है, तो वो यही कहेगा ना, क्या करे बहन जी, सब कुछ है, बस एक शांति हमें चाहिए, शांति और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे ऊंची प्राप्ति किसको कहेंगे, किसको कहेंगे हा? सबसे ऊंची प्राप्ति शांति, संतोष, खुशी, ये इतनी ऊंची प्राप्ति है। जब ये अंदर में हमें महसूस करते हैं तो दुनिया की कोई भी प्राप्ति आकर्षित नहीं करती। जैसे पेट भरा हुआ होता है ना, तो कितने भी 56 प्रकार के आप भोग रख दो वो भोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पेट भरा हुआ है, तृप्त हैं हम। तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि वो सर्वोच्च प्राप्ति अगर आपको करनी है तो पहले खुद को पहचानो, वो पहचान आपको सुबह दी गई, फिर परमात्मा को पहचानो जो भी आपको देंगे, और फिर तीसरी भी एक बात है कि मन आज इतना मैला हो गया है, उस मैले मन में हम ईश्वर को स्थान देना चाहते हैं। अंदर में इच्छाएं तमन्नाएं तृष्णाएं न जाने क्या क्या, वैर दुश्मनी ईर्ष्या नफरत भरी हुई है, और उस मन में हम परमात्मा को स्थान देना चाहते हैं तो कैसे स्थान मिलेगा। जैसे दूध एक सफेद शुद्ध चीज है, पर उसको रखने लिए बर्तन भी तो इतना ही शुद्ध चाहिए। अगर गंदे पात्र में दूध रख देंगे तो उबालेंगे तो दूध भी तो गंदा हो जाएगा, खटाई वाले बर्तन में दूध उबालेंगे तो फट जाएगा, वो दूध जैसा तो नहीं रहेगा जो पीने योग्य हो। इसीलिए परमात्मा की याद उस मन में टिकेगी जो मन इतना ही शुद्ध और पवित्र हो, क्योंकि पवित्र मन में ही शांति आएगी। अगर मन में वो पवित्र विचार नहीं है तो शांति कभी भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। पवित्रता ही शांति की जननी है। इसीलिए मन का शुद्धिकरण भी अति आवश्यक है, तब हम परमात्मा में अपना मन लगा सकेंगे। इसीलिए जब अर्जुन ने ये शिकायत की भगवान से कि हे भगवान, ये मन तो बहुत चंचल है, ये नहीं टिकता, नहीं लगता, तो भगवान ने दो शब्द उनको दिए, दो कदम बताए। गीता के अंदर आते हैं वो दो कदम कि हे अर्जुन, इन दो कदमों को आप पार करो तो आपका मन लग जाएगा। और वो दो कदम क्या बताए? पहला कदम बताया वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य का मतलब ये नहीं छोड़ देना सब कुछ। छोड़ने की बात भगवान ने कभी नहीं कही है, कर्मयोग सिखाया है। मैदान में डट कर रहो और अपना कर्तव्य पालन करो, छोड़ो नहीं। पर वैराग्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राग में रहेंगे, फंसे रहेंगे। जो अभी अभी आपको हमारे प्रेम मसन भाई ने बताया, कहा जाता छोड़ो तो छूटो, अर्थात मन से त्याग, ये वैराग्य है। वैराग्य का मतलब अंग्रेजी में दो शब्द आते हैं, डिटैचमेंट एंड नॉन अटैचमेंट। तो एक है डिटैचमेंट, माना एकदम संन्यास कर दिया, छोड़ दिया सदा के लिए, और दूसरा है साथ में रहते भी न्यारे। और उसका मिसाल दिया कमल का फूल। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ में रह करके भी वो अलिप्त रहता है, इसलिए विष्णु के हाथ में उतना ही हिस्सा कमल के फूल का है जितना कीचड़ से ऊपर है। पूरी डंडी और उसके पत्ते वो सब कुछ भी नहीं है, वो तो कीचड़ में है। इसलिए पहला कदम है अंदर से त्याग वृत्ति, वैराग्य, जिसको कहा छोड़ना नहीं है। परंतु ये सब नश्वर जान करके मन से उपराम होना। और दूसरा अभ्यास। अभ्यास जितना हमारा होगा उतना हमारे लिए सब सहज हो जाएगा। जैसे कपड़े हम पहनते हैं, अगर टाइट कपड़े होंगे तो उतारना कितना मुश्किल लगता है, और ढीले कपड़े होंगे तो उतारना कितना सहज है। तो ये भी अभ्यास हम करते, कैसे हम देह से न्यारे बने, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है। ये वस्त्र तो न जाने कितने पहने हमने, धारण किए, सुबह से रात्रि तक ये वस्त्र बदलते हैं। और देह भी एक वस्त्र है जो कितने बदले किए हमने, आज यहाँ तक पहुँचे हैं, कितने देह रूपी वस्त्र हमने धारण किए होंगे। तो इसीलिए वो अंतर का अभ्यास चाहिए, कैसे देह से न्यारा होना, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर से परे वो चेतन सत्ता आत्मा हूँ जो बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। अब ये जब समझ लिया तो परमात्मा की पहचान भी बहुत जरूरी है। जैसे आत्मा की आपको पहचान मिली कि आत्मा क्या है, एक ज्योति बिंदु है, ज्योति का पुंज है। ये आंखें क्यों नहीं देख सकती है आत्मा को, क्योंकि ये आंखें तो प्राकृतिक है, ये प्रकृति की आंखें उस चीज को जो प्राकृतिक नहीं है उसको कैसे देख सकेगी। और सब कुछ तो ये आंखें देख नहीं सकती, बहुत माइन्यूट एकदम सूक्ष्म जीवाणु भी कैसे देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। और बहुत दूर की कोई भी ग्रह है, कुछ है, सितारे कैसे देख सकेगी, उसके लिए टेलीस्कोप चाहिए बहुत बड़ा। तो इन आंखों की क्षमता बहुत हद में है। चलो वर्तमान तो देख लिया, वो भी जो चार दीवारों के अंदर है, इसके बाहर कहाँ देख सकेगी, इसके ऊपर कहाँ देख सकेगी, ये छत है। चलो फिर भी वर्तमान को देख लिया, भूत को कैसे देखेगी, भविष्य को कैसे देखेगी, भूत तो बीत गया और भविष्य तो अभी आया नहीं है, तो कैसे देख सकेगी। इसलिए इन आंखों की क्षमता तो बहुत कम है। तो जैसे आंखें कमजोर होती है तो चश्मा लगाना पड़ता है, इसी प्रकार परमात्मा हमें वो दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे हम परमात्मा को भी देख सकते हैं, आत्मा को भी देख सकते हैं। पर आप कहेंगे वो दिव्य दृष्टि हमें आप दे दे, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में है। ये तो एक गिफ्ट है, किसको मिल जाती है। लेकिन जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि आत्मा क्या है। एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, एक चमकता हुआ सितारा है। आत्मा के अंदर जो सात मूल गुण है उसका चिंतन बहुत जरूरी है, तब आत्मा अनुभूति कर सकेंगे। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये सात मूल गुण जो निजी गुण है आत्मा के, मूल संस्कार है, वो अनुभव करना है। उन संस्कारों को जगाना है जो सोए हुए संस्कार है। आत्मा के शुद्ध ये सात स्वरूप, ये आत्मा में ही निहित है, इनको कहीं से मांग लेना नहीं है, कोई इनसे खरीद नहीं सकते हैं, कहीं स्थान या व्यक्ति से पा नहीं सकते हैं, ये चिंतन से अनुभव होते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं मैं तो बहुत अशांत हूँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको शांति नहीं दे सकेगी, ये आपको सोचना होगा। इसलिए आपको ओम शांति का पाठ पढ़ाया, ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और अगर आपने ये समझ लिया कि आत्मा मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे शांति कहीं से ढूंढनी नहीं है, कहीं पर देखनी नहीं है, कहाँ से पानी नहीं है, ये मेरे पास ही है, तो क्या होगा, कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकेगा। कोई कितना भी गालियां दे, कुछ भी करे, या पर आपका मन अशांत नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपको ये समझ है मैं कौन हूँ। इसलिए मैं आत्मा हूँ और ये सात मेरे गुण है, मूल गुण है। और इस शरीर में मेरा ये टेम्पररी स्थान, ये भ्रकुटी है, ये मेरा टेम्पररी घर है। और परमानेंट घर जिसके लिए हम कहते हैं भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है, वो तो पांच तत्वों से पार है, वो आत्माओं का भी धाम है। और इस सृष्टि रंगमंच पर हम क्यों आए, क्योंकि पूछा जाता है ना आपका व्यवसाय क्या है, तो हर आत्मा का व्यवसाय क्या है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के एक्टिंग करना। जैसे एक्टर होता है, ये भी एक व्यवसाय है, प्रोफेशन है, क्योंकि उसके अंदर वो कला है, एक्टिंग करने की कला है, तो वो प्रोफेशन बना देता है। और मंच उसको चाहिए एक्टिंग करने के लिए, तो ये सृष्टि भी एक रंगमंच है जहाँ आत्मा आके, जो इतनी ऊंची कलाकार है इस सृष्टि की, वो आकर ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करके एक्टिंग करती है। और इस एक्टिंग में हमें क्या देना है, जो आत्मा के मूल गुण हैं वो सबको बांटना है, ये सबसे बड़ा दान होगा। मन से शक्ति दान, वचन से ज्ञान दान, और अपने कर्मों से गुण दान। इसके लिए धन की जरूरत नहीं है, वचन से गुण दान करने के लिए धन की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक मिसाल देते हैं कि एक भिखारी किसी मिठाई की दुकान पर गया और कहा कि साहब थोड़ी सी मिठाई दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उस दुकानदार ने उसको गालियां देके भगा दिया, हट चल, हाँ यहाँ से हटो, ये भिखारी यहाँ आए हैं सिर खपाने। तो उसी वक्त उस भिखारी ने कहा कि अच्छा साहब आप मिठाई ना दो, परंतु कम से कम मीठा तो बोलो, मीठा बोलने में तो आपका कुछ भी धन खर्च नहीं होगा, मैं मिठाई न भी मांगू पर मीठा तो बोल सकते ना कि माफ करें आप जाएं, प्यार से भी तो बोल सकते ना, गालियां दे करके बोलने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इसमें तो कोई खर्चा नहीं होगा, गुण दान करने में, ज्ञान दान करने में भी कोई खर्चा नहीं होता है। और मनसा से सकारात्मक सोच हर एक के लिए, इसमें भी कोई खर्चा नहीं है। तो ये वास्तव में सच्ची प्राप्ति है जो आत्मा में है, और वो सबको दे सकती है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है इस संसार में आने का। और तीसरा एक लक्ष्य है जो परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है, जिसने भेजा है, उसका हम अपने मन वचन कर्म से इतनी ऊंची स्थिति बनाएं और दूसरों को वो गुण दान, ज्ञान दान, शक्ति दान दे, जिससे ईश्वर का नाम रोशन कर सके। आज हमने अपना भी नाम बदनाम कर दिया है तो ईश्वर का नाम भी बदनाम कर दिया है। जैसे बच्चा होता है ना, अगर कोई गलत काम करता है तो केवल वो बच्चे का ही नाम बदनाम नहीं होता, लेकिन उसके पूरे खानदान का नाम बदनाम हो जाता है। ये किसका बच्चा है, कौन सी जाति का बच्चा है, किस कुल का बच्चा है? इसलिए हम परमात्मा के बच्चे हैं ये हम क्यों भूल गए? और अगर जान गए कि हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे परमात्मा का नाम बदनाम हो। इसलिए ये जब आत्मा को अपना परिचय मिल गया, अब वो परमात्मा है कौन, वो कहाँ है, वो कैसा है, वो कब आता है, वो क्या करता है, कैसे मिलता है, ये भी सारे प्रश्न हैं बहुत। अब इन प्रश्नों का हम आज समाधान देंगे। कई फिर क्या कहते हैं कि ये प्रश्न उनके मन में नहीं है, लेकिन उनके मन में बहुत सी मतें हैं, कईयों के द्वारा सुनी हुई मतें हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, और वो मतें उनके अंदर हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, उन मतों के कारण वो बहुत मूंझ जाता है। जैसे मुझे किसी के घर जाना है, अब उसकी एड्रेस पूरी मालूम नहीं है, वो कहाँ रहता है बस थोड़ा सा ही पता है, उसका नाम ही पता है बस, तो जितनों से पूछेंगे सब अपना अपना वो अपना तरीका बताएंगे, जो जितने जितना वो जानते उतना ही वो बता सकेंगे, क्योंकि हमारे पास और जानकारी कुछ है ही नहीं उसकी। उस नाम के तो कितने होंगे जिस जो नाम हम ले रहे हैं फलाने से, हमको फलाने से मिलना है। चलो एड्रेस में भी एक नाम बता देंगे, लेकिन उसके आसपास भी तो बहुत कुछ है, तो वो भी तो चाहिए। तो परमात्मा कौन है, जब ये प्रश्न पूछा जाता है तब कई विचारधाराएं निकलती है। एक कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है। अब थोड़ा सोचने की बात है, अगर आत्मा ही परमात्मा है तो ये दो शब्द अलग क्यों है? भले परमात्मा भी एक आत्मा ही है, लेकिन अंतर तो है ना। एक चीफ मिनिस्टर हो और दूसरा प्राइम मिनिस्टर हो, अंतर तो है ना। चीफ मिनिस्टर तो एक स्टेट का ही होगा, फिर तो उसके नीचे और मिनिस्टर स्टेट के होंगे, और प्राइम मिनिस्टर तो पूरा देश का है, तो अंतर कितना होगा? जैसे कई प्रकार की कोर्ट होती है, छोटी कोर्ट होती है, बड़ी कोर्ट होती है, न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होता है, कई कोर्ट, पर सबसे बड़ी कोर्ट या न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो आत्मा और परमात्मा, वास्तव में परमात्मा भी एक आत्मा ही है, लेकिन परमात्मा है, सबसे ऊंचे से ऊंची आत्मा है। तो जो ऊंचे से ऊंचा परमात्मा और हम आत्माएं, आत्माएं तो अनेक है, परमात्मा तो एक है, आत्माएं अनेक और परमात्मा एक, उसका बहुत सुंदर उदाहरण भारत में जम्मू में है। जम्मू में एक रघुनाथ मंदिर है, देखा है सभी ने, जिन्होंने देखा है रघुनाथ मंदिर जम्मू का, हाथ उठाए। हरियाणा वाले, पंजाब वाले गए होंगे जरूर देखने। जो तो जम्मू में वो रघुनाथ मंदिर है, जिस मंदिर की विशेषता है कि हर कमरे में अलग अलग पत्थर के स्लैब बने हुए हैं और उन पत्थरों पर छोटे 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 जैसे शालिग्राम बने हुए हैं। ये जितने भी शालिग्राम, कोई कहते 9 लाख है, कोई कहते 33 कोटि देवी देवताएं उनके ये यादगार हैं और बहुत कुछ कहते हैं, गिनती तो किसी ने भी नहीं की होंगी कितने कमरे हैं, और दीवारों पर अनेक देवी देवताओं के चित्र हैं। तो वास्तव में ये जो छोटे छोटे दिखाई, ये सब आत्माएं हैं, और आत्मा के लिए क्या कहते हैं, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, लेकिन परम आत्मा तो वो सबसे अलग होगा ना। तो आत्मा और परमात्मा एक कैसे होंगे? फिर कई कहते चलो आत्मा परमात्मा का अंश है। अब अंश का भी अर्थ समझना है, अंश का मतलब उसका टुकड़ा तो नहीं है ना। आज ये मेरे पास ये रुमाल है, हम इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे, धागे अलग कर देंगे, तो इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो गए, धागे निकल गए। लेकिन परमात्मा के हम अंश है का मतलब उसका टुकड़े तो नहीं है ना, वो तो सदा है ही है, वो तो अनादि अविनाशी सत्ता है, आत्मा भी अनादि अविनाशी सत्ता है। लेकिन अंश का मतलब क्या है कि जो परमात्मा के गुण हैं, वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, जितनी महिमा करो उतनी कम, जिसके लिए कहा गया है कि अगर सरस्वती विद्या की देवी खुद भी ईश्वर की स्तुति लिखने बैठे तो भी कम होगी, इतनी महिमा है उनकी। तो उस परमात्मा की जो अपरम अपार महिमा है, इतने गुणों का वो सागर है, आत्मा भी उन गुणों की अंश जरूर है। जो परमात्मा के गुण है आत्मा में, वही गुण है अंश रूप में, इसलिए क्वालिटी वही है। क्वांटिटी में अंतर होगा, संख्या में अंतर होगा, वो सागर है, आत्मा स्वरूप है। लेकिन अंश कह करके मनुष्य क्या समझते हैं कि वो अंश निकला, एक जैसे बुदबुदा निकला, बूंद निकली, फिर जाके बूंद सागर में मिल गई। अब मिल गई तो अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ना आत्मा का अस्तित्व खत्म होता न परमात्मा का होता है, दोनों ही अनादि अविनाशी सत्ताएं हैं। फिर कई कहते ठीक है परमात्मा तो सर्वत्र है, कण कण में है, सब जगह है। हम कहते सर्वत्र, कण कण में, सब जगह, ये एक भावना बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची भावना है। कभी भी अपने आप को अकेला न समझे, हमेशा ये समझे भगवान मेरे साथ है। इसलिए तो गायन है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, जिसको राखे साइयां मार सके न कोई, भगवान मेरा रक्षक है। ये बहुत ऊंची भावना है, लेकिन अगर इसको सिद्धांत रूप में देखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिद्धांत यही कहेगा कि अगर कोई चीज जहाँ है तो उसका गुण भी वही होना चाहिए। अगर अगरबत्ती कहीं जल रही है तो उसकी सुगंध तो चारों ओर फैलेगी ना, अगर बदबू वाली कोई चीज कहीं है तो उसकी बदबू भी फैलेगी, आग कहीं है तो उसका धुआं तो फैलेगा ना। तो परमात्मा अगर सब गुणों का सागर है तो उनके गुण कहाँ है? आज तो कोई गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए तो भगवान को हम बुला रहे हैं, हे प्रभु आओ, हम पतित हो गए हैं, हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम कपटी हैं, हमें हमारा उद्धार करो। तो बुलाते हैं तो कहाँ से बुलाते हैं? कहाँ उनका जरूर निवास है तभी तो बुलाते हैं। इसलिए सर्वत्र ये भावना बहुत सुंदर है, लेकिन सिद्धांत क्या है? परमात्मा का को भी कोई निवास स्थान है, हम भी वास्तव में आत्माएं वहीं के वासी है, तभी तो हम कहते हैं हम भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। अगर वो भी यहाँ है तो हम फिर कहाँ से आए? इसीलिए उनका भी निवास स्थान है, हमारा भी निवास स्थान है, इस दुनिया में तो हम मेहमान हैं। दो दिन के मेहमान है तो मेहमान का घर तो अलग होता है ना, मेहमान के नाते कहीं जाएगा फिर वहां से उसको जाना है वापस, वहीं तो नहीं रह जाएगा। इसीलिए सर्वत्र को भावना समझें, और जब हम इसको भावना समझेंगे तो हम सत्य रूप में परमात्मा के निवास स्थान को भी समझ सकेंगे। और फिर कई कहते अच्छा ठीक है सर्वत्र न सही, तो हृदय में तो बसता है ना, वो हृदय में बसता है। अब हृदय में बसना ये भी एक भावनात्मक स्थिति है, जैसे किसी को किससे प्यार होता है तो उसको कहाँ स्थान देगा, हृदय में देखा देगा जरूर, दिल का टुकड़ा है, माँ भी कहेगी मेरे दिल का टुकड़ा है ये, मेरे हृदय में इसका निवास है। जिससे प्यार होता है उसको दो जगह दी जाती है, एक तो कहेंगे आँख में, आँख के अंदर जो प्रकाश है सितारा है, एक माँ कहेगी मेरा बेटा मेरी आँख का तारा है। तो आँख का तारा कहना माना आँख में तारा है, आँख में लाइट है माना उसको दिखाई दे रहा है। अगर आँखें बड़ी सुंदर हो पर उसमें लाइट ही नहीं है माना वो नहीं देख सकता है। तो बच्चा है मानो माँ का सच्चा सहारा है, इसलिए माँ कहेगी बेटा मेरी आँख का तारा है या तो मेरे दिल का टुकड़ा है। अब दिल में किसको बसाना होता है जिससे प्यार हो, पर आज हम देखते हैं कितनों को हमने दिल में बसा दिया है। इसीलिए वो गीत है, एक गीत है फिल्मी गीत है शायद, कि दिल के टुकड़े हजार कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, आज दिल के हजारों टुकड़े हो गए क्योंकि बहुतों को दिल में बसा दिया है। भगवान कैसे फिर इस दिल में स्थान लेगा जहाँ अनेकों को बिठा दिया है। एक को बिठाओ तो देखो दिल के जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं ना तो सब जमा हो जाएंगे, एक हो जाएगा। लेकिन ये भावनात्मक स्थिति है। अब उस भावनात्मक स्थिति को जब हम समझते हैं तो महसूस होता है कि उनका कोई स्थान है, फिर कह देंगे कि अच्छा भगवान तो सातवें आसमान में रहता है। अब सातवां आसमान फिर कौन सा है वो भी हमें समझना होगा। एक गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे, तो आकाश में क्या सिंहासन रखा हुआ है जहाँ भगवान बैठा है और वहां से वो धरती पर आता है। तो ये भी एक समझने की बात है, सातवां आसमान माना ये पांच तत्वों से पार एक छठा तत्व है, एक सूक्ष्म वतन भी है, और फिर वो ब्रह्म महतत्व वो आत्माओं का धाम है जिसको सातवां तत्व भी कह सकते हैं। अर्थात इस पांच तत्वों से पार जहाँ सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता वो आत्मा का वास्तव में धाम है और परमात्मा का भी धाम है। इसीलिए सातवां आसमान कहने का अर्थ है वो अखंड ज्योति का महतत्व। कई फिर समझते नहीं ये जो प्रकृति है ना ये ईश्वर है, ये पेड़ पौधे अथवा पहाड़ नदियां सागर ये सब ईश्वर है। वास्तव में ये प्रकृति तो अवश्य दाता उस परमात्मा की रचना है। और एक बहुत सुंदर गीत भी है, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपनों का जो दूजों को दे वो सच्चा इंसान वो धरती का भगवान। तो ये पेड़ पौधे प्रकृति धरती के भगवान के रूप में हमें देती है, एक बीज डालो हजारों बीज धरती से मिलते हैं, एक केवल दो और लाखों गुना होकर के प्रकृति से मिलता है, वो दाता के रूप में है। लेकिन फिर भी वो रचना है परमात्मा की, रचयिता नहीं कहेंगे। और आज हम देख रहे हैं प्रकृति में प्रकोप, रोज कोई न कोई समाचार आता है, कहाँ भूकंप आया कहाँ सुनामी आया कहाँ पर बाढ़ आई कहाँ तूफान आया कहाँ आंधी आई कहाँ ये लैंडस्लाइड हुआ पहाड़ गिरा कितने लोग मरे, ये सब प्रकृति के प्रकोप जो आज हम देख रहे हैं। अब ये ईश्वर की शक्ति थोड़ी, ईश्वर तो सुखदायी है वो दुख थोड़ी देगा इस प्रकार से। फिर कई कहते हैं कि अच्छा परमात्मा का तो कोई नाम रूप ही नहीं है। अब कोई भी नाम रूप नहीं है तो किसको हम कहते हैं परमात्मा, ये भी एक प्रश्न उठेगा। वो है कौन जिसका न नाम न रूप है तो फिर वो चीज भी नहीं है। नाम है रूप है तभी तो उसको याद करते हैं। लेकिन वो नाम और रूप प्राकृतिक नाम रूप नहीं है, इसलिए उसको निराकार जरूर कहते हैं। पर निराकार का मतलब ये नहीं कि उसका न नाम है न रूप है। निराकार माना उसका जैसे ये प्रकृति के नाम रूप है वैसा नाम रूप परमात्मा का नहीं है। मनुष्यों के नाम जो है वो संज्ञावाचक है, लेकिन परमात्मा का नाम गुण और कर्तव्यवाचक है। उनके गुणों और कर्तव्यों के आधार पर वो नाम है। मनुष्यों के नाम भाई चलो जन्म पत्री निकाली, फलाने अक्षर से नाम निकालो। अब नाम कितना भी अच्छा निकलेगा लेकिन अगर गुण हो न हो वो नाम के वो नाम तो बदनाम ही हो जाएगा ना। किसका नाम शांति हो, शांति देवी बहुत नाम रखा है शांति देवी, और देखो तो सारा दिन लड़ती झगड़ती रहती है। शांति देवी का ये काम होता है क्या? नाम शांति देवी, शांति का ही नाम बदनाम कर दिया, लड़ना झगड़ना और नाम है शांति देवी। एक कहानी सुनाते ना, एक औरत थी उसका नाम शांति था, तो जहां भी जाती थी लड़ती रहती थी। अब नाम है तो लोगों को दया भी आती थी कि देखो कैसा नाम और काम क्या करती है। तो एक दिन सब ने जो भी गांव वाले थे ना सब ने ठान लिया आज इनसे कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि बात करते तो लड़ना चालू कर देती है, तो कोई बात नहीं करेंगे। तो सब ने ठान लिया अब जहां जाए लड़ना शुरू करे तो कोई जवाब ही ना दे, किससे लड़े? जवाब सामने से मिले आवाज तब वो जब ताली बजे ना दूसरा भी बोले कुछ तो लड़ाई हो। अब वो बोलती जाए कोई जवाब न दे तो समझ में नहीं आया उसको ये सब क्या हो रहा है। तो वो गई है कुएं के पास और कुएं में जैसे झांका तो सामने देखी उसकी अपनी उसका प्रतिबिंब उसको दिखाई दिया पानी में। उसको लगा कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो उसने गुस्से में आके एक पत्थर मारा। तो पत्थर मारा कुएं में तो आवाज, वो पानी में पत्थर गिरा तो आवाज हुआ टुबुक। अब कहा टुबुक किसी ने कहा है नीचे जो है वो टुबुक का, तो तू टुबुक तेरा बाप टुबुक है तेरी माँ टुबुक तू, यानी बस लड़ने लग गई वो पत्थर से या पानी से। अब बताओ बेचारे पानी का क्या दोष उस पत्थर का क्या दोष, पर नाम शांति देवी। तो देखो नाम तो बदनाम ही कर दिया ना। इस पर भी एक और कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था उसका नाम छज्जू राम था, छज्जू मल, छज्जू और मल, तो छज्जू मल नाम था। तो उसकी जब शादी हुई तो पत्नी ने कहा ये छज्जू मल नाम क्या होता है, अच्छा नाम नहीं मिला क्या तुम्हारे माँ बाप ने, ऐसा कैसे नाम रख दिया है छज्जू मल। तो कहा कि जाओ दुनिया में ढूंढ के ला अच्छा सा नाम रखो अपने ऊपर। तो गया वो तो देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा था, उससे पूछा भैया आपका नाम क्या है, भीख मांग रहा था। तो कहा मेरा नाम है धनपत राय, धनपत राय। तो उसको लगा धनपत राय और भीख मांग रहा है, चलो और आगे गया तो देखा एक बूढ़ी औरत, बहुत बूढ़ी थी और एक उखली कूट रही थी, धान कूट रही थी। तो उससे पूछा माता जी आपका नाम क्या है, तो कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। तो कहा कि लक्ष्मी कूटे उखली धनपत मांगे भीख, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि अर्थ तो नहीं है जो शब्द है नाम उसका, उस अनुसार तो वो है नहीं। फिर और आगे गया तो देखा कि किसी की मृत्यु हो गई थी तो उसकी अंतिम यात्रा जा रही थी। तो पूछा कि कौन मर गया, तो कहा कि अमरनाथ जी मर गया। तो कहा लक्ष्मी कूटे उखली धनपत मांगे भी, अमरनाथ भी चल बसा तो मेरा छज्जू नाम है ठीक, भले अर्थ नहीं है। तो कम से कम भले अर्थ नहीं है पर अनर्थ तो नहीं है। तो अगर नाम इतना सुंदर हो और वो उस अनुसार गुण न हो तो वो नाम भी किस काम का हा? किसी का नाम हसमुख था, हसमुख इतना सुंदर नाम, तो लेकिन सदा उसकी शक्ल रोती हुई। तो हमने उनसे कहा भैया आपका नाम तो कितना अच्छा हसमुख, तो हंसो ना मुस्कुराओ। कहते क्या करें माँ बाप ने ऐसी शक्ल दे दी, तो दोष किसका, माँ बाप का, क्योंकि शक्ल ऐसी दे दी। अब मुस्कुराने में माँ बाप का क्या दोष, वो तो आपके हाथ में है, इसके ऊपर तो कोई पैसा तो खर्च होता नहीं है। तो कहने का भाव है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा कहना ये भी जैसे ईश्वर से दूर हो रहे हैं। लेकिन परमात्मा का नाम और रूप ये प्राकृतिक नहीं है, कोई संज्ञावाचक नहीं है, लेकिन गुण और कर्तव्य वाचक है। तो क्या है परमात्मा के गुण, क्या है उनके कर्तव्य, उनको अगर हम समझ जाएंगे तो वो नाम उनका एक्यूरेट हम समझ सकेंगे। और जब अंश कहा तो वो अंश माना उसका रूप बिल्कुल अति सूक्ष्म है, जिनकी कोई मेजरमेंट नहीं है, वो भी हम समझेंगे। फिर कोई कहते हैं कि सभी रूप परमात्मा के बिल्कुल ऑपोजिट, कहाँ कोई नाम रूप नहीं, कहाँ कहाँ सब रूप नाम रूप उसके ही है। अब सब नाम रूप उसी के ही हैं, तो कई कहते हैं वही तो सब कुछ कर रहा है, पत्ते पत्ते को भी वही हिला रहा है। अब यही काम धंधा भगवान को दिया है, केवल पत्ते हिलाना, न जाने कितने पत्ते कितने पेड़ इस दुनिया में है, एक एक को वो हिलाता रहेगा क्या। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, करण करावन आप पे आप, मानुष के नहीं हाथ। अब ये भी भावनात्मक स्थिति है, क्यों, क्योंकि कर्म तो हम कर रहे हैं ना। अगर परमात्मा कर्म कर रहा है तो भोगे भी तो वही, हम क्यों भोग रहे हैं, जिसने किया उसको ही भोगना है, जो करेगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वो भरेगा। तो फिर परमात्मा का कर्तव्य को समझना है, उनका कर्तव्य तो सबसे न्यारा है, इसलिए उनको निर्गुण निराकार निरंजन का जो न्यारा है। अब वो न्यारा कैसे है उनको भी हमें समझना होगा, केवल नाम रूप से न्यारा कह देना या सभी नाम रूप उसके कह देना, उसमें फिर कौन किसको याद करे वो भी समझ में नहीं आता है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। फिर कोई कहते हैं कि परमात्मा तो है ही नहीं, क्योंकि इतनी मूझ गए ना तो आखिर कहेंगे वो तो है ही नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं आया कुछ भी। अब वास्तव में परमात्मा कहते हैं कि भावनात्मक स्थिति को अलग रखो, पर सिद्धांत क्या कहता है, सबसे पहली बात परमात्मा के स्वरूप को समझने के लिए कुछ ऐसे बातें हैं जो सर्व धर्मों को स्वीकार्य है। आज कोई भी मेरे सामने एक व्यक्ति आकर खड़ा होगा और कहेगा मैं भगवान हूँ, आजकल बहुत कुछ कह रहे हैं हम भगवान हैं। अब भगवान है तो लड़ेगा झगड़ेगा, हाँ ईर्ष्या करेगा या मारेगा, ये सब करेगा क्या। भगवान क्या होता है उसको भी तो समझना है। परमात्मा हम किसको कहेंगे, सबसे पहली बात परमात्मा हम उसको कहेंगे जो सभी धर्मों को स्वीकार्य हो, केवल हिंदू धर्म को ही नहीं, और एक धर्म को भी उसमें भी सबको स्वीकार्य नहीं होता। अगर कोई मठ पंथ का कोई गुरु है और वो कहे मैं भगवान हूं, तो चलो उस मठ पंथ के जो अनुयायी होंगे वो भावनावश कह देंगे, पर दूसरे थोड़ी कहेंगे। पर परमात्मा उसको कहेंगे जिसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी किसी भी धर्म का हो, वो स्वरूप उसको स्वीकार्य हो। अब वो स्वरूप तो कोई दैहिक स्वरूप नहीं होगा, तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को स्वीकार्य होगा वो भी देखेंगे। दूसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च हो, यानी सर्वोच्च माना जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति ना हो। आज हम देखेंगे जिसने जन्म लिया है वो सर्वोच्च नहीं कहला सकता है, जो माँ बाप से जन्म लेता है वो सर्वोच्च नहीं कहला सकता है, क्योंकि उनके माता पिता उनसे ऊंचे हैं। इसलिए मातृ ऋण पितृ ऋण आचार्य ऋण ये सब ऋण माने गए हैं, वो ऋण चुकतु नहीं होता है क्योंकि वो उनसे ऊंचे हैं ना। तो माता पिता हमसे ऊंचे हैं, लेकिन वो माता पिता सबसे ऊंचे फिर भी नहीं है, क्योंकि उनके भी माता पिता है, उनके भी माता पिता है, पर वो मात पिता जिसके लिए हम कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो मात पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, वो कौन से मात पिता है जिनसे सुख घनेरे आत्मा को मिलते, जिनका कोई अन्य माता पिता नहीं है, वो सर्वोच्च है। फिर वो परम शिक्षक हो जिसका कोई शिक्षक न हो। आज मेरे लिए मेरा शिक्षक बहुत मान्य है, मेरा प्राइमरी स्कूल टीचर भी होगा जिसने मुझे 50 साल पहले या 60 साल पहले पढ़ाया था, आज भी अगर मैं उनसे मिलूंगी मैं उनको सर कहूंगी, मिस कहूंगी, टीचर कहूंगी। आज भले मैं अनेकों को पढ़ाती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए अभी भी टीचर है। भले प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया होगा मुझे, लेकिन वो सर्वोच्च टीचर तो नहीं है, क्योंकि उसकी भी कोई टीचर होगी जिसने उनको पढ़ाया होगा। लेकिन परमात्मा सर्वोच्च है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, वो विद्या देने वाला जिसको अन्य कोई विद्या कहीं से लेने की सीखने की जरूरत नहीं है, वो कौन? तो सर्वोच्च रूप में माता पिता हो, सर्वोच्च रूप में शिक्षक हो, सर्वोच्च रूप में गुरु हो, जिसका अन्य कोई गुरु नहीं है। अगर मेरा कोई गुरु है तो उसका भी कोई गुरु था, उसका भी कोई गुरु था, तो वो गुरु उनसे ऊंचा हो गया। पर वो सतगुरु जिसका कोई अन्य गुरु ना हो, वो सबका सतगुरु हो, वो परमात्मा कौन? फिर हम देखें उसको, पहचानेंगे वो सर्वोच्च को। फिर जितना ही वो ऊंचे से ऊंचा, उतना ही वो सबसे न्यारा भी हो, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा हो पर उनके समान भी कोई ना हो। अगर समान भी अगर कोई होगा तो भी लड़ाई होगी, मैं ऊंचा तुम ऊंचा। कुर्सी पर तो एक ही बैठ सकता है ना, दो तो नहीं बैठेंगे। इसीलिए सर्वोच्च माना जो सबसे ऊंचा हो, और सर्व से न्यारा माना उन जैसा और दूसरा ना हो। अब किस बात में न्यारा? हम आत्माएं जन्म मरण में आने वाली आत्माएं हैं, चक्र में आने वाली है। जिसने जन्म लिया है, देह धारण किया है, एक दिन देह को त्यागना है जरूर। तो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा नहीं आते, वो अजन्मा है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र के बाद से दूसरा चक्र है, जन्म मरण से जुड़ा हुआ चक्र, कर्म और फल का चक्र। हम आत्माएं इस शरीर में आई, कर्म करना शुरू किया, और जैसा कर्म वैसा फल आत्मा ही भोगती है। कर्म फल के चक्र के साथ तीसरा चक्र जुड़ा हुआ है, पाप और पुण्य। कौन सा कर्म, पाप कर्म या पुण्य कर्म? और पाप पुण्य के चक्र के साथ चक्र जुड़ा हुआ है सुख और दुख का। ये भी एक चक्र है, सुख और दुख का खेल है ये। कर्मों अनुसार आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। अगर अच्छे कर्म करेगी तो सुख पाएगी, बुरे कर्म करेगी तो दुख पाएगी जरूर, ये उसका फल है। भगवान के घर में न्याय है, अंधेर नहीं है, देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। और जहां पर सुख दुख का चक्र है, वहां इस संसार की जितनी भी सापेक्षता है, मानी मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, दिन रात, ये सब चक्र है। इन चक्रों में आत्मा आती है, लेकिन परमात्मा नहीं आते। इसलिए अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, असोचता, सब में अ आ जाता है। और जब अ शब्द आया तो उसमें फिर निराकार, निर्गुण, निरंजन, यानी वो आकार जिसका कोई स्वरूप मापा नहीं जा सकता, वो आकार जो निरंजन हो, जो इन सब जो चक्रों से परे हो, निर्गुण हो। निर्गुण माना जो प्रकृति के गुण हैं, उन गुणों से ऊपर हो। इसलिए परमात्मा को त्रिगुणातीत कहते हैं, निर्गुण के साथ त्रिगुणातीत, क्योंकि प्रकृति में तीन गुण आते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। परमात्मा इन तीनों गुणों में नहीं आता। जो चीज चक्र में आती है वो सतो रजो तमो के चक्र में आती है, तीन गुणों में आती है हर चीज। लेकिन परमात्मा इस चक्र से परे है, इसीलिए निरंजन, निराकार, निर्गुण कह दिया, ओंकार कह दिया, सत नाम कह दिया। वो नाम जो सत्य है, जो कभी मिटता नहीं है। और फिर चौथा है, वो सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञ कौन? हम मनुष्य आत्माएं सर्वज्ञ नहीं कहला सकती है। तीनों कालों का ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, कल क्या होगा ये हमें पता नहीं है, पिछले जन्म में हम कौन थे पता नहीं है, या बाहर क्या हो रहा है पता नहीं है। एक कालदर्शी भी पूरे नहीं है। कई बार हम भ्रम में आते हैं, वर्तमान में भी भ्रमित हो जाते हैं। तो तीनों कालों को जानना ये परमात्मा की शक्ति है। इसीलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, जानी जाननहार, सर्वज्ञ, ज्ञान का सागर। और जहां वो सर्वज्ञ है वहां ही वो सर्व का दाता भी है। जिस दाता के लिए कहा जाता, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता। मनुष्य आत्मा दाता नहीं बन सकती है, अगर देगी भी तो ले करके देगी, न कहां से लाएगी। दान पुण्य कोई करते हैं, लेकिन दान पुण्य करना भी उसके लिए धन भी तो चाहिए, तभी तो दान कर सकेंगे। तो इसीलिए परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वमान्य है, सर्व से न्यारा है, सर्वज्ञ है, सर्व का दाता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, परमात्मा के लिए क्या कहते हैं। हाँ, वो एक है। अब क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ। कई धर्म पिताएं के लिए उनके अनुयायी समझते वही भगवान है, लेकिन क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ, बच्चा हूँ। अपने जब उसको सूली पर चढ़ा रहे थे क्रॉस पर, तभी भी क्राइस्ट ने क्या कहा, भगवान फादर फॉरगिव देम फॉर देयर सिंस, आप इन्हें क्षमा कर दे हे पिता, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो किस पिता को क्राइस्ट ने याद किया, जरूर उनसे कोई ऊंचा है, क्राइस्ट से भी ऊंचा है। इसी प्रकार मोहम्मद ने कभी नहीं कहा मैं अल्लाह हूं, उसने क्या कहा, अल्लाह एक नूर है। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, लीड मी दाय काइंडली लाइट। मोहम्मद ने कहा नूरे इलाही, नूर है वो सबसे ऊंचा नूर है। अभी भी मक्का में जब हज करने जाते हैं हाजी लोग, मुसलमान लोग जाते हैं, वहाँ एक काला पत्थर है जिसको संगे अस्वद कहते हैं, उस पत्थर को बहुत मान देते हैं, तब अपनी हज यात्रा को सफल मानते हैं। और कई इसे मक्केश्वर भी कहते हैं, मक्का का ईश्वर है। इसी प्रकार गुरु नानक ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। सारी गुरवाणी आप देखेंगे ग्रंथ साहिब, उस एक की महिमाएं, और सदा उसकी उंगली गुरु नानक की ऊपर की तरफ थी। एक ओंकार सतनाम करता पूर्व निर्भय निर्भय अकाल मूर्त जूनी सबन, गाते जाओ उस एक की महिमा। और खुद के लिए क्या कहा, गुरु भी नहीं कहा खुद को, ये तो गुरु तो उनके शिष्यों ने कहा, वो तो नानक नीच सदा कह विचार, नानक नीच नानक दास, अपने को बहुत ही नम्र किया। इसलिए परमात्मा हम किसको कहेंगे, ज़ोरास्टर थे जो पारसियों के गुरु थे, कभी भी उसने भी अपने को भगवान नहीं कहा। पारसी लोग वो अग्यारी में जाते हैं, वहाँ फायर टेंपल में अग्नि को महत्व देते, अग्नि अग्नि को ही वो ईश्वर का रूप समझते हैं। तो किसी भी धर्म पिता ने खुद को भगवान नहीं कहा। चाहे आप जैन धर्म देखो, बुद्धिस्ट धर्म देखो, महावीर और महात्मा बुद्ध, उन्होंने भी तपस्या की, तपस्या करके सत्य को पहचान, उनको बोध हुआ। अभी जो बोध हुआ उस बोध को क्या हुआ, क्योंकि पहले तो वो राजकुमार थे, संसारी थे, तो संसारी ने तपस्या की तो किसका ध्यान किया, जरूर उनसे कोई ऊंचा होगा जिसका उन्होंने भी ध्यान किया, जो उनको एनलाइटनमेंट मिली, बोध हुआ, सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ध्यान किसका किया। तो उनसे ऊंचा जरूर है कोई शक्ति, चाहे बुद्ध धर्म में चाहे जैन धर्म में, तो सबसे ऊंचा वो भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग मठ है। ये सब ज्योति स्वरूप परमात्मा की यादगार है। ज्योतिर्लिंगम नाम से उनको याद किया जाता है। लिंगम का यह अर्थ होता है सिंबल, चिन्ह, निशानी। ज्योतिर्लिंगम माना ज्योति की निशानी। तो ज्योति की निशानी क्या दिखाएंगे, जैसे ये अंगुष्ठाकार रूप है, ये अंडाकार, ये ज्योति का प्रतीक है। तो वो ज्योति को कैसे दिखाएं, तो ज्योति स्वरूप को ज्योतिर्लिंगम के रूप में एक पत्थर का की मूर्ति बना दी, और उसके जितने नाम रख दिए, 12 ज्योतिर्लिंगम मठ है भारत के कोने कोने में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, ये सब परमात्मा के गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। और इन सब नामों को एक शब्द दे सकते हैं, वो शब्द है शिव। शिव का अर्थ होता है शांति, शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है पवित्र। बहुत सारे अर्थ है, वो सारे अर्थ एक परमात्मा से लगते हैं। आज कोई अपने ऊपर शिव नाम रख दे लेकिन वो परमात्मा तो नहीं होगा ना। शिव बालक भी रखते हैं, शिव के बच्चे हम। और जब उस शिव परमात्मा को हम पहचानने लगते हैं तो महसूस होता है कितनी सबकी भावनाएं उनके प्रति, क्योंकि वो अनादि है, वो अविनाशी है, वो अजर है, वो अमर है, सदा है, सत्य है, नित्य है। अमरनाथ पर जाते हैं यात्रा करने के लिए, अमरनाथ का दर्शन करने। और अमरनाथ को क्यों इतना महत्व देते हैं, क्योंकि वो समझते स्वयं वो है, वो बूंद 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 बर्फ की गिरती रहती और एक शिवलिंग बन जाता है। स्वयं वो स्वयं रचा हुआ, किसी और ने नहीं बनाया। कुछ साल पहले बहुत गर्मी पड़ी थी तो वह अमरनाथ में भी जो शिवलिंग था जो बना, वो जो ये बर्फ का, वो पिघल गया, तो पुजारियों ने बर्फ लेकर के उसको बनाया। तो लोगों ने कितना विरोध किया कि ये आपने ऐसे क्यों किया, क्योंकि उसको स्वयं वो होना है, स्वयं प्रकट हो, इसलिए उनका दर्शन करने इतनी मेहनत करके यात्रा करके ऊपर जाते हैं। तो अमरनाथ जो सदा अमर है, कभी मरता नहीं, वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा नेपाल में पशुपतिनाथ है। आज हम सब पशु तुल्य हो गए हैं, कैसी मनुष्य की आज स्थिति है, पशु भी हमसे अच्छे हैं। कुत्ता कितना वफादार होता है, घोड़ा कितना वफादार होता है, परंतु आज मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं है, तो जानवर से भी गए गुजरे हैं आज के इंसान। तो परमात्मा कैसे इन सब का उद्धार करते हैं, उनको इतना श्रेष्ठ बनाते हैं, ये परमात्मा का कर्तव्य है। सोमनाथ सोम रस ज्ञान का अमृत पिला करके आत्मा को शुद्ध करना, हमारी इंद्रियों को शीतल करना, ये परमात्मा का ही कर्तव्य है। और फिर रामेश्वर, श्री राम का भी वो ईश्वर है, राम को भी शक्ति शिव से लेनी पड़ी, लेकिन परमात्मा तो उसको कहेंगे जिसको किसी अन्य से शक्ति लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयंभू है, वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। इसीलिए श्री राम का भी वो भगवान है जिसको रामेश्वर कहा, श्री कृष्ण का भी भगवान है। दिखाते मथुरा में गोपेश्वर का मंदिर है, श्री कृष्ण को भी शक्ति लेनी पड़ी शिव से, वहां महिषासुर का वध करने लिए, असुरों का नाश करने लिए शिव से शक्ति लेनी पड़ी। शक्तियों ने भी शिव से शक्ति ली असुरों का नाश करने लिए। तो ये असुर कौन है? असुर कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हर एक के अंदर में फंसे हुए हैं। ईश्वर तो सर्वव्यापी नहीं, पर ये विकार ही सर्वव्यापी है। आज घर घर नर्क बन चुका है इन विकारों के कारण। कहाँ घर ग्रस्त आश्रम माना जाता था, जहाँ सबको आश्रय मिलता था, एक होम स्वीट होम कहते थे, आज लोग समझते घर से बाहर जाए क्योंकि घर में कलह क्लेश है। इसलिए सबसे अच्छा घर तो आत्माओं का धाम परम धाम है, बस मन से वहां चले जाओ, भले रहो कहीं भी। तो इसीलिए परमात्मा को हमें याद करना है। पर कई लोग कहते हैं कि आप शिव कहते हो, क्या हम शंकर को याद करें, क्योंकि शिव शंकर एक समझ लिया है। पर शंकर भी ध्यान की अवस्था में दिखाया गया है। शंकर ने कहां से शक्ति ली जो वो काम वासना को जीत सका? उसका एक नेत्र खोले, तीसरा नेत्र तो भस्म कर दे। भस्म करना माना विकारों को भस्म करना। तो वो शक्ति शंकर ने भी कहां से ली? शिव परमात्मा से ली। इसलिए उसको भी सदा तपस्या रूप में दिखाया है। अब उस शिव परमात्मा को हमें याद करना है, जिसको शक्तियों ने भी याद किया। स्वामी विवेकानंद के बहुत फॉलोअर्स है दुनिया में, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, वो अपने आप को हमेशा श्री राम कृष्ण परमहंस का भक्त शिष्य कहलाता था हमेशा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मेरा गुरु है यही मानता था, पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कभी अपने को गुरु नहीं माना। वो कहता था बस माँ जगदम्बा, काली, काली का वो भक्त था, काली काली शक्ति की उपासना करता था, माँ का भक्त था, माँ को उसने आगे किया, इसलिए अपनी पत्नी को भी माँ बनाया, माँ का शारदा माँ पवित्र दृष्टि रखने के लिए। महात्मा गांधी ने भी अपनी पत्नी को माँ का टाइटल दिया, कस्तूरबा माँ कहा, तब उसकी दृष्टि पवित्र हुई। तो शक्तियों पर शक्ति ने भी शक्ति कहाँ से ली, शिव शक्ति कहलाई जाती है, तो शिव शक्ति माना शक्ति ने भी शिव से शक्ति ली। अब उस शिव को जिसको हम सर्वोच्च कहेंगे उसको हमें याद करना है, यही राजयोग है, जिसके ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं, जिसको सभी धर्म पिताओं ने याद किया, वो सदा शिव कल्याणकारी हम सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। चाहे कोई अपने आप को हिंदू कहलाए, मुसलमान कहलाए, यहूदी कहलाए, ईसाई कहलाए, पारसी कहलाए, सिख कहलाए, किसी भी धर्म का कहलाए, वो उस एक को ही याद करता है। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, सत्य है, ईश्वर सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो शिव है यानी कल्याणकारी है और सुंदर है, सुंदर माना वो गुणों का सागर है, जिसको सारी दुनिया सभी आत्माएं याद करती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, किसी भी धर्म का हो। और जब हम उस परमात्मा को पहचानने लगते हैं तो हमारा मन उसी में लग जाता है। वो कौन है, वो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है। रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, नक्शा बनाते, ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ में एक लकीरें खींचते हैं कहाँ से कहाँ तक उसकी मेजरमेंट होती है, लेकिन जो बिंदु बनाते हैं ना ग्राफ पर, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं, उसकी कोई माप नहीं है, उसी से ही हम आगे लकीर खींचते हैं, पर उसकी क्या मेजरमेंट है, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं, बिंदु। तो ना बिंदु की मेजरमेंट है और ना इन्फिनिटी सिंधु की मेजरमेंट है, अनंत की भी कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहते अनंत वो जगह है, वो मेजरमेंट है जहाँ दो पैरेलल लाइंस मिलती है, दो इक्वल लाइंस वहाँ जाके मिलेगी, लेकिन उसकी कोई माप नहीं हो सकती, मिलती जरूर है, मना है जरूर लेकिन उसकी माप नहीं है। तो न बिंदु की माप है न सिंधु की माप है, इसलिए परमात्मा को क्या कहेंगे, बिंदु में सिंधु, वो परम सिंधु है, परम ज्योति है, परम शब्द उनके साथ जुड़ जाता है। तो जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, जितनी महिमा करते जाओ उतनी कम, अब उस परमात्मा को हमें याद करना है। लेकिन मन को कहाँ ले जाना है, कहाँ है परमात्मा, इतना सर्वोच्च परमात्मा तो उनका स्थान भी सर्वोच्च ही है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, धाम ना ठाव कहते हैं, तो जो ऊंचे से ऊंचा भगवान, तो कितना ऊंचा उसका ठाव होगा, उसका धाम होगा, जो पांच तत्वों से परे एक अखंड ज्योति का महतत्व है वो, जहाँ ये सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता। तो हम आत्मा वहाँ ही अपने मन को लगाएं और ऐसे महसूस करें कि वो शांति के धाम में, परम धाम में, मुक्ति धाम में, जहाँ मैं आत्मा सब बंधनों से मुक्त हूँ, उस परमात्मा के सामने हूँ, उस रूप में बिंदु और ज्योति परम सिंधु के सामने हूँ, और अभी वो परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। वो आकर के कैसे इस सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं। ये घोर कलयुग हो गया है, इस घोर कलयुग को बदलकर फिर से सतयुग बना रहे हैं और उसके लिए हमें जागना होगा। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि माना अज्ञान की नींद से भगवान हमें जगाने आए हैं। और क्या कहते हैं शिव परमात्मा, अब अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। देव देव महादेव, शंकर को महादेव कहेंगे, पर शंकर का भी पिता जिसको कहा ओम नमो शिवाय, शिव परमात्मा ही नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो फिर भी देवता ही नमः कहेंगे, महादेव कहेंगे, लेकिन देवों का भी देव वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा है। तो जब हम गॉड कहते हैं, गॉड माना क्रिएटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा कैसे वो क्रिएट करते रचना रचते हैं, विष्णु द्वारा पालना होती है, शंकर द्वारा इस कलयुगी सृष्टि का विनाश। और अभी वो समय आ गया है जबकि परमात्मा वो कर्तव्य अपना कर रहे हैं। तो क्या परिचय मिला आपको परमात्मा का, वो रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है, वो परम धाम का निवासी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, त्रिदेव कहलाता है, त्रिमूर्ति कहलाता है, त्रिनेत्री कहलाता है। ये त्रि शब्द उनके लिए ही यूज होता है, त्रिपुंड दिखाते हैं, तीसरा नेत्र दिखाते हैं, तीन लकीरें दिखाते हैं, ये सब उस शिव के लिए दिखाते हैं जो हम सब आत्माओं के परम पिता हैं। तो उस रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु परमात्मा को अब मन से याद करना है। वो कैसे याद करेंगे उसका विस्तार हम आपको शाम को बताएंगे, ठीक है? समझ गए सभी? समझ गए? जो समझ गए हाथ उठाएं। अभी आपसे कोई पूछे परमात्मा कौन है तो आप जवाब दे सकेंगे? हाँ, सभी जवाब दे सकेंगे। जो जवाब दे सकेंगे, जो सुना उसी प्रकार से सुना सकेंगे दूसरों को, वो हाथ उठाए। अच्छा, तो एकदम आप होशियार हो गए। इसीलिए अभी तो कोई नहीं कहेगा पता नहीं भगवान कौन है, वो कहाँ है, अभी कोई नहीं कहेगा, वो क्या करता है पता नहीं, पता नहीं नहीं। जो कहेंगे ना पता नहीं पता, उनका पता ही कट जाएगा वो तो भगवान से दूर ही चले जाएंगे। लेकिन अब भगवान अपनी पहचान खुद हमें दे रहे हैं और उस पहचान के आधार से हम परमात्मा को याद करेंगे, वो फिर आपको हम शाम को बताएंगे, ठीक है? अभी हम सब 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और अपने मन को उस बिंदु में टिकाएंगे जो बिंदु है और गुणों का सिंधु है। यही निराकार स्वरूप है, यही निर्गुण स्वरूप है, यही निरंजन स्वरूप है। बस 2 मिनट बैठेंगे फिर आपको
ओम शांति। 4:45 बजे आप सभी को फिर से डायमंड हॉल में आना है। अभी सभी बैठे रहे, योग के बाद ही कुछ डायरेक्शन सुन करके आप जाएंगे, कोई उठेंगे नहीं, सभी बैठे। 4:45 बजे आप सभी को यहाँ डायमंड हॉल में आना है। अभी अभी 2 मिनट बाबा के याद में बैठकर सत्र को संपन्न करेंगे।
मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदा शिव मेरा परम पिता परमात्मा सदाशिव निरा ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा